अध्याय 6 वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म का इतिहास ऋग्वेद से प्रारंभ माना जा सकता है, जहां विष्णु एक सौर देवता के रूप में वर्णित है। विष्णु पूजा पर आधारित धर्म वैष्णव कहलाया। इन्हें भागवत, नारायण, हरि, बैकुंठनाथ आदि नामों से वर्णित किया गया है। वैष्णव धर्म को सूरी, सुहृत, भागवत, सत्वत, एकांतिक, तन्मय तथा पांचरात्रिक धर्म भी कहा जाता है। इन नामों में सबसे अधिक प्रचलित नाम भागवत था। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भागवतों का वर्णन है। गुप्त अभिलेखों में विष्णु की अपेक्षा भागवत शब्द अधिक प्रिय है। महाभारत में भी वैष्णव संप्रदाय का वर्णन केवल अंतिम काल में ही प्राप्त होता है। तन्मय तथा एकांतिक संप्रदाय मुख्यतः उनके पूजकों के द्वारा रखे गए, जिन्होंने अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था तथा एकाग्रता का भाव प्रकट किया। डीसी सरकार ने सूरी शब्द का संबंध ऋग्वेद के सूरी से जोड़ा, जिसे विष्णु के परम पद से संबंधित किया गया है। सुहृत शब्द अर्जुन से संबंधित है, जिन्हें कृष्ण का परम मित्र माना गया है। विष्णु शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में भी विचारकों के भिन्न मत हैं। ओल्डेन वर्ग ने विष्णु का अर्थ विश्व को पार करने वाला माना है। जॉनसन ने इसे गरुण माना है। जे गोंडा ने विष्णु को अनार्य माना है, क्योंकि ऋग्वेद एवं जेद अवस्था में विष्णु की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। विष्णु का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में विष्णु आदित्यों की एक श्रेणी है तथा सूर्य का प्रतिरूप है। ऋग्वेद में विष्णु को ऋतस्य गर्भभू कहा गया है। इन्हें युद्ध का नेतृत्व करता माना गया है, जो इंद्र के साथ मिलकर युद्ध करते हैं। विष्णु एवं इंद्र विश्व के शासक हैं तथा उन्हें सिपिविष्ट नामक उपाधि से विभूषित किया गया है। ऋग्वेद में उनके तीन पदों की यात्रा का वर्णन है, जिससे उन्होंने सृष्टि को मापा था। उन्हें उरुगाय तथा उरुक्रम कहा गया है। ऋग्वेद में विष्णु एक छोटे स्तर के देव हैं। प्रथम बार ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठ देव के रूप में उनकी महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथों में उन्हें यज्ञ से संबंधित माना गया है। इस काल में वे प्रजापति एवं शिव के साथ तीन महान देवों के रूप में स्थापित हुए। ऐत्रेय ब्राह्मण में उनकी उच्च स्थिति का भान नहीं होता है तथा उन्हें देवनाम द्वापर उपाधि से विभूषित किया गया है। विल्शन के अनुसार विष्णु सूर्य के प्रातःकाल, मध्याह्न तथा सूर्यास्त की बेला का द्योतक है। कोल बुक के अनुसार तीन पगों के गुण ने पुराणों में विष्णु के वामन अवतार का विकास किया। ऋग्वेद में विष्णु इंद्र से गौण देवता है तथा कृत के बद्ध में उन्होंने इंद्र की सहायता की थी। महाभारत तथा पुराणों में यह विचारधारा उलट गई तथा इंद्र को विष्णु से गौण मान लिया गया। वह स्वयं योद्धा हो गए। वराह के रूप में हिरण्याक्ष का वध, नरसिंह के रूप में हिरण्यकश्यप का वध, राम के रूप में तारक का वध तथा स्वयं विष्णु के रूप में नामुचि, कालनेमी, राधेय, हार्दिक्य, सुम्भ तथा निसुम्भ आदि का वध किया। महाभारत के अनुसार उन्होंने मधु एवं कैटभ नामक दानवों का वध किया था। सतत ब्राह्मण में विष्णु एवं सूर्य का तारतम्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसके अनुसार विष्णु का मुख कटकर ही सूर्य का स्वरूप बना। सूर्य से विष्णु का संबंध इनके चक्र एवं गरुड़ से ही प्राप्त होता है। चक्र का स्वरूप सूर्य से स्थापित किया जा सकता है। ऋग्वेद में गरुण का वर्णन नहीं है, परंतु दिव्य सुपर्ण का वर्णन है, जो सोमरस का हरण करता है। यही सोमरस हरने वाला पक्षी पौराणिक काल में अमृत को ले जाने वाले गरुड़ में परिवर्तित हो गया। उत्तर वैदिक काल में गरुड़ विष्णु का वाहन हो गया। सूर्यवंश एवं नागवंश में शत्रुता होने के कारण गरुड़ को सांपों का भोजन करने वाला माना गया है। उपनिषद में विष्णु के आधुनिक स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है। उन्हें गहरे नीले वर्ण का क्षीर सागर में निवास करने वाला चतुर्भुजी तथा गदा कमल चक्र एवं शंख धारण करने वाला वर्णित किया गया है। उनके सीने पर श्री वत्स का संकेत अंकित है तथा उन्होंने कौस्तुभ नामक आभूषण धारण कर रखा है। नारायण वैष्णव धर्म में प्रारंभ में नारायण प्रमुख देवता थे। इनका स्थान संभवतः विष्णु से उच्च था। बौद्धायन धर्म सूत्र तथा तैतरी आरण्यक में विष्णु एवं नारायण दोनों को एक ही देव माना गया है। नारायण का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। बैरनट के अनुसार नारायण एक गोत्र है जो नर शब्द से निकला है। संभवतः नारायण एवं नर दोनों एक ही ऋषि परिवार से होंगे तथा सूर्य के उपासक होंगे। इसने नारायण संप्रदाय का विकास हो गया। शतपथ ब्राह्मण में नारायण का वर्णन ईश्वर के रूप में है न कि पुरुष के रूप में। आरजी भंडारकर तथा सुविधा जायसवाल ने नारायण शब्द की उत्पत्ति महाभारत के उद्योग एवं नारायणी पर्वों के आधार पर की है। वह नारायण इसलिए है क्योंकि उन पर समस्त विश्व आश्रित है। नर एवं नारायण का यह चरमोत्कर्ष श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित है। यहाँ कृष्ण नारायण का तथा अर्जुन नर का स्वरूप है। गीता में नारायण का विश्व रूप स्वरूप वर्णित है। महाभारत के आरण्यक पर्व में नारायण के मुख में मार्कंडेय के प्रवेश का वर्णन है। नारायण के मुख में पहुंचकर उन्होंने समस्त सृष्टि को देखा था। ठीक इसी प्रकार अर्जुन ने नारायण के वैश्विक स्वरूप का दर्शन किया था। नारायण को प्रजापति से भी संबंधित किया जाता है। मनुस्मृति वायु पुराण तथा विष्णु पुराण में ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा को नारायण भी कहा जाता है। जब नारायण की प्रसिद्धि बढ़ गई तो विष्णु की नाभि पर ब्रह्मा को स्थापित कर दिया गया। महाभारत के अनुसार नारायण धर्म के पुत्र थे तथा एक महान ऋषि हैं। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें शक्ति का वरदान दिया था। कभी कभी नारायण का साम्य कपिल मुनि से भी स्थापित किया जाता है तथा कपिल को विष्णु का पंचम अवतार माना जाता है। वासुदेव कृष्ण भागवत धर्म को सबसे अधिक प्रसिद्धि वासुदेव कृष्ण के ईश्वर के रूप में स्थापित होने से प्राप्त हुई। वासुदेव कृष्ण का प्रथम विवरण छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। यहाँ ये देवकी एवं वासुदेव के पुत्र हैं तथा सत्वत या विष्णु कबीले से संबंधित हैं। इनके गुरु घोर अंगिरस हैं। सत्वत मुख्यतः ब्रज क्षेत्र के निवासी थे तथा मथुरा उनका प्रमुख केंद्र था। शायद कृष्ण को गोविंद गोपाल गोपेंद्र आदि नाम इस क्षेत्र के कारण ही मिले हैं, क्योंकि यहाँ गोप या पशुपालक अधिक संख्या में थे। कृष्ण की जीवन लीला का वर्णन छांदोग्य उपनिषद पतंजलि के महाभाष्य घटाजातक उत्तराध्ययन सूत्र तथा महाभारत में मुख्य रूप से मिलता है। घटाजातक के अनुसार वासुदेव कृष्ण तथा उनके भाई उपसागर कंस की बहन देवक भाव के पुत्र थे। जन्म के पश्चात इन भाइयों को अंधक वेणु तथा उनकी पत्नी नंदगोप को सौंप दिया गया। उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव कृष्ण को केशव कहा गया तथा उन्हें 63 सलाका पुरुष में से एक माना गया है। वे 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी के समकालीन थे। ये दोनों सौर्यपुर के राजकुमार थे। केशव के माता पिता क्रमशः देवकी एवं वासुदेव थे, जबकि अरिष्टनेमी के माता पिता शिवा एवं राजा समुद्र विजय थे। मथुरा में विष्णुगढ़ समूह माने गए हैं। कौटिल्य में अर्थशास्त्र में विष्णुओं को गढ़ कहा गया है। यहीं पर कृष्ण का जन्म हुआ। हरिवंश तथा पुराण ग्रंथों में कृष्ण के बाल्यकाल का वर्णन प्राप्त होता है। अपने बाल्यकाल से ही इन्होंने दानवों का दमन प्रारंभ कर दिया था। कृष्ण ने धेनुक नामक गधे का, अरिष्ट नामक बैल रूपी दानव का, अश्वरूपी केशन का वध किया। उन्होंने 2 अर्जुन वृक्षों को उखाड़ फेंका। परालाम्बा नामक दानव व पूतना नामक दानी तथा कोले पिंड नामक दानव का वध किया। बड़े भ्राता बलराम या संकर्षण के साथ मिलकर चानुरा तथा मुष्टिका नामक राक्षसों का वध किया। जिस रस्सी से उन्हें बांधा गया था उसे उन्होंने तोड़ डाला था, अतः वे दामोदर कहलाए। यमुना में जन रक्षा हेतु उन्होंने नागकालिया का दमन किया था तथा अपने मामा अत्याचारी कंस का भी वध किया था। पौराणिक आख्यानों में कृष्ण एवं इंद्र की घोर शत्रुता दर्शाई गई है। कृष्ण ने इंद्र को कृषकों का देवता माना है तथा गोपालकों को उनकी पूजा न करने के निर्देश दिए। कृष्ण के अनुसार गोपालकों को गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, अतः इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज में घोर वर्षा की, परंतु कृष्ण ने गोवर्धन को उंगली पर उठाकर समस्त नागरिकों को शरण दी तथा इंद्र के दर्प को चूर कर दिया। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में यह वर्णित है कि वर्षा ऋतु के समय कृष्ण के द्वारा अनुमति दिए जाने के पश्चात इंद्र की पूजा की जाती थी। बाण की राजधानी सोनितपुर में कृष्ण ने ज्वार को पराजित किया तथा बाण की हजार भुजाओं को काट डाला। हरिवंश पुराण युवावस्था में रुक्मणी से उनके विवाह का वर्णन देता है। वायु पुराण में राधा से उनके संबंधों का वर्णन है। तुषांतशिला अभिलेख में विष्णु को एक बृहद भ्रमण माना गया है जो लिली के पुष्प में विराजमान है। सांब की माता जामवंती वासुदेव कृष्ण की पत्नी थी। छांदोग्य उपनिषद में वासुदेव कृष्ण के गुरु अंगिरस घोर थे। अंगिरस घोर का वर्णन कौशिकी ब्राह्मण में भी हुआ है। गीता में कृष्ण को अच्युत कहा गया है। उपनिषदों में भी घोर के शिष्य को अच्युत कहा गया है, वह कृष्ण ही थे। घोर ऋषि से प्राप्त होने वाली शिक्षा को कृष्ण ने गीता में पुनः उद्घाटित किया, अतः छांदोग्य उपनिषद के मानव कृष्ण गीता के ईश्वर कृष्ण के रूप में विकसित हुए। छांदोग्य में पांडवों का विवरण नहीं है। छांदोग्य उपनिषद एवं महाभारत की तिथि को लगभग 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जा सकता है। जैन साहित्य में भी कृष्ण को अरिष्टनेमी का समकालीन माना जाता है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का काल 8वीं शताब्दी माना जा सकता है। अतः इस आधार पर 22वें तीर्थकर का काल लगभग 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ। अतः कृष्ण की तिथि इसी के आसपास होनी चाहिए। मौर्य काल तक आते आते वासुदेव कृष्ण संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में एक सम्मानित देव हो गए। मेगस्थनीस के अनुसार हेरोक्लीस मथुरा के प्रमुख देवता थे। क्यूंतीस कर्टियस के अनुसार सिकंदर के युद्ध के समय पोरस की सेना के अग्रणी भाग में हेराक्लीस की मूर्ति रखी गई थी, जिससे उन्हें अपने विजय का पूर्ण विश्वास था। पूर्व अपने वंश को पांडवों से मानते हैं, जिन्हें कृष्ण ने महाभारत की विजय दिलाई थी। जे एन बनर्जी ने हेराक्लीस को कृष्ण माना है। यह आख्यान अन्य विवरणों के आधार पर भी सत्य माना जा सकता है। एरियन ने मेगस्थनीस का उल्लेख करते हुए कहा है कि हेराक्लीस यमुना नदी पर स्थित मथुरा के सूरसेनों के प्रमुख देवता थे तथा उनका जन्म चंद्रगुप्त मौर्य के 138 वंशों पूर्व हुआ था। हेराक्लीस की एक पुत्री का भी वर्णन है, जिसका नाम पंडिया था। कृष्ण का गोपाल स्वरूप भी मथुरा में विकसित हुआ। गोपाल संस्कृति चरवाहों से संबद्ध थी। नंदग्राम से कृष्ण अपने गोपाल स्वरूप में पशुचारी संस्कृति के पोषक थे। पुराणों में कृष्ण एवं उनके गोप मित्रों का गोकुल से वृंदावन को मोहित किए जाने का विवरण उपरोक्त अवतरण से जोड़ा जा सकता है। संभवतः गोप संस्कृति ऋग्वेद से प्रभावित है, क्योंकि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था पशुचारण पर भी आधारित थी। वैदिक साहित्य में गोप सिपविष्ट गोविंद एवं दामोदर का वर्णन इसी का द्योतक है। वास्तविकता में गोपाल का विकास आभीरों के द्वारा किया गया। आभीरों को विदेशी जनजाति माना जाता है। आरजी भंडारकर के अनुसार पशुचारी संस्कृति पर आधारित यह जन लगभग प्रथम शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में आया तथा अपने साथ ईसाई परंपरा को भारत लाया, लेकिन गोपाल एवं गोपियों के कथानक का विकास हरिवंश तथा पुराणों के ग्रंथों में प्राप्त होता है। सातवाहन शासक हाल के गाथा सप्तशती में भी गोपाल का गोपियों के साथ रासलीलाओं का विवरण मिलता है। संगम साहित्य में भी इनका वर्णन है। तमिल साहित्य शिलापदिकरम में मायावान तथा उनकी पत्नी नाप्पिनाई का वर्णन है, जो गोपों के द्वारा पूजे जाते थे। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि प्रथम शताब्दी के आसपास कृष्ण पूजा दक्षिण भारत में व्याप्त हो चुकी थी। वासुदेव कृष्ण की भक्ति का साक्ष्य अभिलेखों से भी प्राप्त किया जा सकता है। वासुदेव कृष्ण की सर्वोच्चता पर आधारित भागवत धर्म की शिक्षाओं का वर्णन महाभारत में भीष्म पर्व के श्रीमद् भगवद गीता तथा शांति पर्व के नारायणी खंड से प्राप्त होता है। अपने विशेष गुणों के कारण श्रीमद् भगवद गीता को एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में स्वीकारा गया। गीता का काल नारायणी खंड से पहले का है, क्योंकि नारायणी कांड में वर्णित चतुर्व्यूह गीता में नहीं है। नारायणी में यह वर्णित है कि गीता का उपदेश स्वयं कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। पुराणों में इसे परम ब्रह्म से उत्पन्न माना गया है। परम ब्रह्म ने इसे विश्वान को प्रदान किया, विश्वान ने इसे मनु को तथा मनु ने इसे इक्ष्वाकुओं को प्रदान किया। इक्ष्वाकुओं के द्वारा यह ग्रंथ के रूप में स्थापित हुआ। गीता का भगवत गीता का नाम संभवतः भगवत या नारायणी धर्म के कारण ही पड़ा। पांचरात्र के पांच सिद्धांतों के व्यूह को छोड़कर अन्य चारों पराविभव अंतर्याम तथा आज का विवरण श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होता है। परास्थिति में ईश्वर को सर्वोच्च माना गया है। विभव में विष्णु के अवतार का वर्णन है। वैष्णव धर्म में अवतारवाद का प्रथम विवरण गीता में ही वर्णित है। गीता में सर्वप्रथम निष्काम धर्म का सिद्धांत विकसित हुआ। श्वेताश्वतर उपनिषद में भक्ति की जो विचारधारा विकसित हुई वह गीता में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। इसके अनुसार मनुष्य को संपूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा से अपना कार्य करना चाहिए तथा फल की कामना नहीं करनी चाहिए। कर्मणीय वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण ने न केवल सच्चे ज्ञान अपितु सच्चे योग को भी प्रतिपादित किया है। सच्चा योग त्याग से ही संभव है। योगः कर्मसु कौशलम्। केवल स्थिति प्रज्ञ ही आदर एवं अनादर से परे है। जो स्थिति प्रज्ञ है वही ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करते हैं। कृष्ण ने ज्ञान एवं कर्म की एकता पर बल दिया है। जो ऐसा करते हैं वही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। कृष्ण के अनुसार चार प्रकार के विद्वान पुरुष उनकी शरण में आते हैं। आर्त जो दुख होने के कारण शरणागत है, जिज्ञासु जो जिज्ञासा के कारण शरणागत है, अर्थार्थी जो धन की प्राप्ति की लालसा के कारण शरणागत है, ज्ञानी जो वास्तविक रूप में विद्वान है। पांचरात्र वैष्णव धर्म का ही नाम है। नारायणी खंड में प्रथम बार पांचरात्र को नारायण भक्त कहा गया है तथा स्वयं नारायण को पांचरात्रिका कहा गया है। संभवतः यह उपाधि सतत ब्राह्मण में वर्णित पांचरात्र यज्ञ से ली गई है। वैष्णव धर्म को पांचरात्र धर्म क्यों कहा गया है इस पर विद्वानों में मतभेद है। नारद के अनुसार पांचरात्र में रात्र का अर्थ ज्ञान से है, अतः पांचरात्र पांच प्रकार के ज्ञान तत्व मुक्तिप्रद भक्तिप्रद यौगिक वैश्विक का विवरण है। ईश्वर संहिता के अनुसार नारायण ने अपना धर्म पांच ऋषियों शांडिल्य औपगायन मौज्जायन कौशिक एवं भारद्वाज को सर्वप्रथम दिया, इसलिए इसे पांचरात्र कहा गया है। पदम तंत्र के अनुसार चूंकि वैष्णव धर्म ने पांच विरोधी संप्रदायों योग सांख्य बौद्ध जैन एवं पाशुपतों को नष्ट किया इसलिए पांचरात्र कहलाया। अग्निपुराण पांचरात्र को पांच कर्मों तप पुण्य नाम मंत्र तथा योग पर आधारित मानता है। आयुर्बंधन संहिता इसे पांच प्रकार के स्वरूप पर आधारित मानती है। परा विष्णु के परम ब्रह्म स्वरूप की आराधना, व्यूह परिवार पूजा जिसमें कृष्ण संकर्षण अरिहिष्य सांब तथा अनिरुद्ध हैं, विभव अवतार पूजा, अंतर्यामी स्वरूप स्थित अदृश्य शक्ति आर्च मूर्ति पूजा। लेकिन नारायणी खंड में इन पांच स्वरूपों की पूजा का वर्णन नहीं प्राप्त होता है। सुविधा जायसवाल ने पांचरात्र को पांच दिन चलने वाले पांचरात्र यज्ञ से संबंधित किया है। अथर्ववेद के वैतान सूत्र में पांच दिनों तक चलने वाले मनुष्य बलि यज्ञ का वर्णन मिलता है। पांचरात्र की शिक्षाओं तथा आगमों को चार भागों में विभाजित किया जाता है। ज्ञान ईश्वर प्रकृति व्यक्ति आत्मा सृष्टि की उत्पत्ति मुक्ति मार्ग हेतु दार्शनिक ज्ञान। योग समाधि के द्वारा मुक्ति प्राप्ति। क्रिया मंदिर निर्माण मूर्ति निर्माण आदि का वर्णन। चार्य पूजा की विधि उत्सव सामाजिक कर्तव्य इत्यादि। नारायणी खंड में वर्णित पांचरात्र दर्शन संहिता के दर्शन से साधारण एवं कम कर्मकांडी है। यह अद्वैत पाक सांख्योग तथा व्यक्तिगत देव पूजा का मिश्रित स्वरूप है। पांचरात्र अद्वैत ज्ञान पर अविश्वास करता है जो निवृत्ति एवं प्रविष्टि दोनों में है। निवृत्ति ब्रह्म का एवं प्रविष्टि शक्ति का द्योतक है। पांचरात्रों पर तांत्रिक मत का भी प्रभाव है। इनका विश्वास है कि विश्व की उत्पत्ति गृह प्रकार के मंत्रों से हुई है। पंचविष्टि वीर एवं व्यूवाद पंचविष्णु पूजा तथा चतुर्व्यूह ने वैष्णव धर्म को अन्य देवताओं से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता की। पंचविष्णु में वासुदेव कृष्ण के साथ साथ उनके अन्य पारिवारिक सदस्यों की भी पूजा होती है। प्रथम शताब्दी में मथुरा के मोरा नामक स्थान से तोषा नामक स्त्री के द्वारा स्थापित अभिलेख में पंचविष्णु का उल्लेख हुआ है। यह पंचविष्णु निम्न है: संकर्षण वासुदेव एवं रोहिणी के पुत्र, वासुदेव कृष्ण वासुदेव एवं देवकी के पुत्र, पद्युम्न वासुदेव कृष्ण एवं रुक्मिणी के पुत्र, शाम्ब वासुदेव कृष्ण एवं जामवंती के पुत्र, अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र। इससे यह विदित होता है कि पंचविष्णु वीरों की पूजा प्रथम शताब्दी ईस्वी में मथुरा क्षेत्र में यादव सत्वत विष्णु लोगों के द्वारा की जाती थी। विष्णु धर्मोत्तर में इनके मूर्ति निर्माण का वर्णन है। बृहत संहिता में भी विष्णु बलदेव शाम्ब तथा प्रद्युम्न की मूर्ति निर्माण का वर्णन है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के गोशुंडी राजस्थान के अभिलेख में संकर्षण एवं वासुदेव के सम्मान में पूजा शिला प्रकार बनवाने का वर्णन है। तक्षशिला के शासक अंतियाल किलदास के दूत हेलियोडोरस ने विदिशा में एक गरुड़ध्वज स्थापित किया था। यह विदिशा या वेशनगर शुंग शासक भागमद्र के दरबार में आया था। हेलियोडोरस ने वासुदेव के सम्मान में गरुड़ध्वज स्थापित किया तथा उन्हें देवदेवस कहा तथा स्वयं परम भागवत की उपाधि प्राप्त की थी। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के सातवाहन रानी नयनिका के नाना घाट अभिलेख में भी वासुदेव पूजा का वर्णन है। पंचरात्र पूजा में चतुर्व्यूह भक्ति का वर्णन है। परास्वरूप में वासुदेव सबसे प्रमुख है। व्यू का अर्थ ऐसी उत्पत्ति से है जो किसी को उत्पन्न करती है, परंतु उत्पत्ति करने वाली वस्तु का स्वरूप नहीं परिवर्तित होने देती। व्यू पद्धति के अनुसार वासुदेव ने अपनी परादृष्टि से संकर्षण एवं प्रवृत्ति को उत्पन्न किया। संकर्षण एवं प्रवृत्ति के संयोग से पद्युम्न एवं मानस उत्पन्न हुए। प्रद्युम्न एवं मानस के संयोग से अनिरुद्ध एवं अहंकार उत्पन्न हुए। अनिरुद्ध एवं अहंकार से महाभूत उत्पन्न हुए, जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ। वासुदेव को ही इन गुणों जैसे ज्ञान बल वीर ऐश्वर्य शक्ति एवं तेज का संरक्षण बताया गया है। वासुदेव की चतुर्व्यूह परंपरा में शाम्ब को स्थान प्राप्त नहीं है। इन प्रथम चारों व्यूह से 12 एवं अन्य व्यूह का विकास हुआ। वासुदेव से केशव नारायण एवं माधव का, संकर्षण से गोविंद विष्णु एवं मधुसूदन का, प्रद्युम्न से त्रिविक्रम वामन एवं श्रीधर का तथा अनिरुद्ध से ऋषिकेश पद्मनाभ एवं दामोदर विकसित हुए। इन 16 व्यूह के साथ 8 विदेश्वरों का भी विकास हुआ, जो निम्न है: पुरुषोत्तम, जनार्दन, अशोक, साज, उपेंद्र, अच्युत, कृष्ण, नरसिंह तथा हरि। वी छोटे व्यूह तथा विदेश्वरों की कुल संख्या 24 है। इनको चतुर्विंशति मूर्ति कहा जाता है। इन व्यूह परंपरा में वासुदेव कृष्ण का स्थान संकर्षण से ऊपर है तथा यह परंपरा गीता में वर्णित नहीं है, जिससे यह विदित होता है कि उसकी उत्पत्ति महाभारत काल के बाद की है। गोशुंडी नानाघाट तथा मथुरा अभिलेखों में भी व्यूह पूजा का वर्णन न होकर पंचवीरों की भी पूजा का उल्लेख है। संभवतः पतंजलि के महाभाष्य में चतुर्व्यूह पूजा का प्रथम विवरण है। संकर्षण, संकर्षण बलराम या बलदेव का वर्णन सर्वप्रथम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हुआ है। महाभारत में संकर्षण को विष्णुवीर तथा वासुदेव एवं रोहिणी की संतान बताया गया है। पुराणों के संकर्षण का संबंध सर्प पूजा से है। महाभारत के भी एक उद्धरण में महान सर्प बलदेवन का वर्णन है। बोगेल ने संकर्षण को सर्प देवता से संबंधित पौराणिक आख्यानों से माना है। संकर्षण का मदिरा पेय स्वरूप, पाम के पत्ते के रूप में इनका चिन्ह, शेषनाग के रूप में इनका अवतार तथा यह पंक्ति की मृत्यु के समय में उनके मुख से सर्प निकला था आदि इन्हें सर्प से संबंधित करता है। इन्हें वैष्णव संप्रदाय में बाद में सम्मिलित किया गया। पुराणों एवं पांचराज संहिता में इन्हें रुद्रशिव से संबंधित किया गया है। ब्रह्मांड पुराण में रुद्र को हलयुत कहा गया है। संकर्षण को कृषि से भी संबंधित किया गया है तथा इन्हें कृषि का देवता माना गया है। संकर्षण के दो चिन्ह मूसल एवं हल है। संकर्षण का अर्थ भी खेत जोतना होता है। शिव को भी कृषि से संबंधित किया गया है। मेगास्थनीज के अनुसार जब डायनोसियस भारत आए तो उन्होंने लोगों को बैलों से जुताई करना सिखाया। प्रथम बार यह कार्य उन्होंने स्वयं किया। अर्थशास्त्र में संकर्षण को एक महान योगी कहा गया है। महाभारत के अनुसार उन्होंने द्वापर युग की समाप्ति तथा कली के प्रारंभ में सत्वत धर्म की स्थापना की थी। विष्णु वीरों में वह सबसे बड़े हैं, परंतु प्रार्थना में उनका स्थान वासुदेव कृष्ण के बाद है। वासुदेव कृष्ण अर्जुन को पूजनीय है, जबकि बलदेव संकर्षण दुर्योधन के द्वारा पूजे जाते हैं। कौशुंडी का अभिलेख एवं पतंजलि वासुदेव के साथ संकर्षण का भी वर्णन करते हैं। संकर्षण की प्रमुख उपाधियां रोहन्य, लांगलिक, बलराम आदि हैं। पुराणों में राजा रैवत की ऊंचे कद वाली पुत्री रैवती बलराम संकर्षण की पत्नी थी। उसकी ऊंचाई घटाने के लिए बलराम ने उसे अपने हल से दबा दिया था। महाभास में बलराम एवं केशव के मंदिरों का भी विवरण प्राप्त होता है। अवतारवाद। वैष्णव धर्म में अवतारवाद का प्रारंभ नारायण का वासुदेव कृष्ण के एकात्म से माना जा सकता है। वैष्णव धर्म में प्रमुख देवताओं जैसे नरसिंह, वाराह, बुद्ध आदि को सम्मिलित किया गया है, जिससे वैष्णव धर्म में अवतारवाद का विकास हुआ। वैष्णव धर्म में अवतारवाद को स्पष्ट रूप से गीता में विकसित किया गया तथा पुराणों में उन्हें महात्म्य प्राप्त हुआ। पुराणों में विष्णु के 10 स्पष्ट अवतारों की व्याख्या हुई है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि। वराह एवं मत्स्य पुराणों में इनका क्रमानुसार वर्णन है। पांचरात साहित्य में विष्णु के मानवीय पशु तथा वनस्पति के स्वरूप में अवतार का वर्णन प्राप्त होता है। विष्णु पूजा में विभव स्वरूप अवतार की ही अवधारणा है। सत्वत एवं अहिबंधुन अहिबुंधय संहिता में विष्णु के 39 अवतारों का वर्णन है। पद्मनाभ, ध्रुव, अनंत, शक्वेतवमान, मधुसूदन, विधादिदेव, कपिल, विश्वरूप, विहंगम, कौदत्तमान, बादावकात्र, धर्म, वागीश्वर, एक अणवसई, कामेथस्वर, वारा, नरसिंह, पीयूषरण, श्रीपति, कंटकमान, राहुजीत, कालमनेमेध्य, परिजातहर, लोकनाथ, सातमन, दत्तात्रेय, न्युगोत्सई, एकरित गतनु, वामनवे, त्रिविक्रम, नर, नारायण, हरि, कृष्ण, परशुराम, राम, धनुर्धर, वेदविद, कल्कि, पातालशायन। अवतारवाद में विष्णु के आर्च एवं विभव दोनों स्वरूपों की पूजा होती है। इनके 10 प्रमुख अवतार निम्न हैं। पहला, मत्स्य। मत्स्य अवतार का प्रथम विवरण सत्पथ ब्राह्मण में है, जहां मनु को प्रलय के समय मछली के द्वारा रक्षित किया गया था। महाभारत में मछली को प्रजापति ब्रह्मा कहा गया है। इससे विदित होता है कि मछली को प्रथमतः प्रजापति का तत्पश्चात विष्णु का अवतार माना गया। विष्णु ने मत्स्य का अवतार लेकर चारों वेदों तथा सप्त ऋषियों की रक्षा की तथा सृष्टि की पुनर्रचना में अपना योगदान किया। दूसरा, कच्छप या कूर्म। कूर्म अवतार भी शतद ब्राह्मण में वर्णित है तथा प्रजापति से संबंधित है। वैष्णव धर्म में यह प्रजापति से ही लिया गया है। प्रलय के समय खो गई बहुमूल्य वस्तुओं की प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन हुआ। विष्णु कछुए का रूप रख कर महासागर में विराजमान हुए। हिमालय की शाखा मंदरांचल के मथानी का कार्य लिया तथा नागवासुकी ने रस्सी का कार्य किया। समुद्र मंथन से लक्ष्मी, महान विष, अमृत, कौस्तुभ सहित 14 बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति हुई। राम ने भी कच्छप को नारायण कहा है। तीसरा, वाराह। वाराह अवतार पूर्व आर्य संस्कृति के सुकर पूजन का आर्य धर्म में मिश्रण है। ऋग्वेद ने वराह का वर्णन किया है, जो आर्यों का शत्रु था तथा इंद्र के द्वारा वध किया गया था। तैत्री संहिता में वाराह अनार्यों की संपत्ति की पहाड़ियों पर रक्षा करता था। विष्णु ने उसे पहचान लिया, इसी कारणवश वह विष्णु का शत्रु हो गया। सत्पथ ब्राह्मण में एमुषा नामक सुअर का वर्णन है, जिसने दैवी जन्म से पृथ्वी को उठा लिया था। एमुषा को प्रजापति से संबंधित किया गया है। महाभारत काल में वराह विष्णु का अवतार थे तथा उसने हिरण्याक्ष का वध किया था। वराह को कृषि संबंधी देव भी माना गया है। मध्य प्रदेश में उदयगिरी गुफा में वराह की मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में किया गया था। उत्तर प्रदेश में भीतर गांव से भी वराह का चित्रण प्राप्त होता है। रघुवंश तथा रावणवाहों में भी महावराह तथा आदिवराह का वर्णन है। वराह के रूप में विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी की रक्षा की थी। चौथा, नरसिंह। तैत्तिरीयारण्यक के अतिरिक्त किसी भी वैदिक साहित्य में नरसिंह का वर्णन नहीं प्राप्त होता है। कभी कभी इंद्र तथा दानव नामुची का संस्करण नरसिंह से संबंधित किया जाता है। हरिवंश के अनुसार जब विष्णु भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने सताना प्रारंभ किया तो देवताओं की प्रार्थना पर विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया। हिरण्यकश्यप का मानव तथा पशु वध नहीं कर सकते थे। विष्णु ने नरसिंह के अवतार से हिरण्यकश्यप का वध किया। पांचवा वामन। वामन अवतार की कथा विष्णु के ऋग्वेद के 3 पदों में ईश्वर की अभिव्यक्ति में वर्णित है। दानव राजा बलि ने अपने तप से समस्त विश्व को जीत लिया था। जब वह यज्ञ चल रहा था तो विष्णु ने वामन का स्वरूप रखकर उसे 3 पदों की मांग की। मांग स्वीकार किए जाने पर विष्णु ने अपना आकार बृहद कर 3 पगों से समस्त सृष्टि को माप लिया तथा बलि को पाताल भेज दिया। महाभारत में वामन विष्णु की गणना आदित्य के पुत्र आदित्यों में हुई है। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख वामन की स्तुति से भी प्रारंभ होता है। गया में वामन के पदों का हाथ की छाप का अंकन स्वीकारा जाता है। छठवां परशुराम। परशुराम का अवतरण ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष की प्राणिकता पर आधारित है। यह कथा भृगु ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिपादित की गई तथा केवल उन्हीं में प्रचलित थी। परशुराम के कृतवीर अर्जुन के वध हेतु अवतार लिया था। कृतवीर ने परशुराम के पिता यमदमनी को प्रताड़ित किया था, जिससे कुपित होकर परशुराम ने समस्त क्षत्रियों के विनाश हेतु बीड़ा उठाया था। 21 बार संहार का प्रयास किया। अंततः परशुराम स्वयं राम के द्वारा पराजित किए गए। इन्हें विष्णु का अवशेष अवतार माना जाता है। सातवां राम। राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। विष्णु का यह अवतार प्रख्यात ज्ञानी दानव रावण का वध करने के लिए हुआ था। ऋग्वेद में इक्ष्वाकु, राम, दशरथ आदि का वर्णन है, परंतु देवता के रूप में राम की स्थापना नहीं प्राप्त होती है। विष्णु का राम के रूप में अवतार का वर्णन नारायणी खंड कालिदास के रघुवंश, दशरथ जातक तथा पुराणों में प्राप्त होता है। सीता को भी इसी काल में राम से जोड़ा गया। उन्हें कृषि की देवी तथा शिरध्वज जनक की पुत्री माना गया। सीता आयोनिज थी तथा पति के द्वारा अपमानित होने पर पुनः पृथ्वी के गर्भ में वापस लौट गई थी। दशरथ जातक में राम को वाराणसी का शासक माना गया है तथा राम, लक्ष्मण एवं सीता को कौशल्या के संतान माना गया है। आठवां कृष्ण। सत्वत कृष्ण स्वयं विष्णु है। कुछ विद्वानों में उनको दशावतार में स्थान देने पर मतभेद है, क्योंकि विष्णु या कृष्ण दोनों एक ही हैं। इन्हें पूर्णावतार कहा जाता है, जबकि अन्य को अंशावतार माना जाता है। नौवां बुद्ध। गुप्त काल में बुद्ध को वैष्णव धर्म में सम्मिलित कर लिया गया। वैष्णव धर्म ने बुद्ध को विष्णु का अवतार मानकर उसे ब्राह्मण धर्म का अंग बना लिया। प्रारंभ में वैष्णव विद्वानों ने इसे स्वीकार नहीं किया। कुमारिल भट्ट ने बुद्ध को नारायण का अवतार नहीं माना है। हारिति स्मृति में बुद्ध की पूजा को प्रतिबंधित एवं निंदित किया गया है। अयबुंध्य चैत्या में बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है तथा उन्हें संत मान कहा गया है। जयदेव के गीत गोविंद के अनुसार विष्णु ने समाज सुधार हेतु एवं बलि को प्रथा रोकने हेतु बुद्ध का अवतार लिया था। दसवां कल्कि। कल्कि विष्णु का भविष्य अवतार है। कल्कि अवतार का विवरण महाभारत के अरण्य कांड में प्राप्त होता है। कल्कि मलेच्छों के दमन हेतु कलयुग के अंत में अवतरित होंगे। श्वेत अश्व पर सवार होकर वह दैवी खड़क से सृष्टि को सुधारेंगे। विष्णु का यह अवतार बुद्ध के मैत्रेय अवतार से प्रभावित दिखता है। श्री लक्ष्मी। बौद्धायन धर्म सूत्र में श्री सरस्वती, तुष्टि, पुष्टि आदि देवियां वैष्णव धर्म के साथ संबंधित की गई हैं। सीनवाली, सरस्वती तथा नील देवी जैसी देवियां भी विष्णु की पत्नी के रूप में वर्णित है, परंतु लक्ष्मी इस संप्रदाय की सर्वप्रमुख देवी थी। विष्णु नारायण का श्री लक्ष्मी से संबंध सर्वप्रथम ऋग्वेद के खिल्ल सूक्तों के श्री सूक्त में प्राप्त होता है, लेकिन इन सूक्तों को वास्तविक ऋग्वैदिक काल की रचना न मानकर प्रक्षिप्त माना जाता है। श्री लक्ष्मी विष्णु प्रिया के रूप में महाभारत में भी स्थापित हुई। विष्णु पुराण, रघुवंश, अमरकोश आदि साहित्यों में श्री लक्ष्मी को विष्णु की पत्नी बताया गया है। सीता, रुक्मिणी आदि इनकी अवतार हैं। श्री एवं लक्ष्मी वास्तविकता में दो देवियां थीं। वाजसनेयी संहिता में श्री एवं लक्ष्मी को पुरुष की दो पत्नियां माना गया है। तैतरी आरण्यक में इन पत्नियों के नाम हीरी एवं श्री बताए गए हैं। ऋग्वेद में श्री को ही लक्ष्मी कहा गया है। महाभारत के शांति पर्व में श्री ही लक्ष्मी हैं। जय गोंडा ने इन्हें चिन्ह या प्रतीक माना है, जबकि कुछ विद्वान इनका संबंध पूर्व आर्य संस्कृति से जोड़ते हैं तथा उत्पादकता का प्रतीक मानते हैं। श्री सूक्त में इनको आर्द्र, नित्यपुष्ट, करिष्णी आदि कहा गया है। वह कमल पर निवास करती हैं तथा कमल के वर्ण की हैं। कुमार स्वामी ने कमल से संबंध के कारण श्री को उत्पादकता से संबंधित किया है। श्री लक्ष्मी का संबंध पशुओं से भी है, उन्हें हरिणी कहा गया है। कुविंदों के सिक्कों पर श्री का अंकन हिरण के साथ है। प्रारंभ में उत्पादकता से संबंधित होने के कारण श्री कृषकों तथा पशुपालकों के द्वारा पूजित थी, परंतु बाद में वह धन तथा व्यापार की देवी हुई तथा वणिकों की प्रधान देवी बनी। धन की देवी होने के कारण यह अत्यधिक चंचल है तथा एक स्थान पर नहीं टिकती है। श्री की पूजा अन्य स्वरूपों से भी होती है, जैसे ब्रह्मश्री, राज्यश्री, धनलक्ष्मी, नगर लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, वाणिज्य लक्ष्मी, स्वर्ग लक्ष्मी इत्यादि। श्री को हीरी, मेधा, धृति, पुष्टि, शांति, लज्जा, कीर्ति, भूति, रति आदि भी माना गया है। शतपथ ब्राह्मण में श्री को प्रजापति की पुत्री माना गया है। बौद्ध साहित्य में श्री लक्ष्मी धट्टरठ की पुत्री हैं। शांति पर्व में श्री लक्ष्मी को विष्णु के माथे से निकले स्वर्ण कमल से जन्मा माना गया है। लक्ष्मी की उत्पत्ति का सबसे रोचक प्रसंग समुद्र मंथन से उत्पत्ति का है। समुद्र मंथन से सोम, सुरा, अप्सरा, एरावत, कल्पवृक्ष एवं परिजात, कौस्तुभ, कालकूट तथा धन्वंतरी के साथ वे उत्पन्न हुई। श्री लक्ष्मी को हाथी से संबंधित किया गया है। प्रारंभिक सिक्कों एवं मुद्राओं में श्री लक्ष्मी को हाथी के साथ अंकित किया गया है। महाभारत के अनुसार श्री पहले असुरों के साथ निवास करती थी। इंद्र ने असुर राजा प्रहलाद से श्री को मांग लिया, तत्पश्चात श्री ने असुरों को त्याग दिया। श्री लक्ष्मी का अंकन अन्य धर्मों में भी मिलता है। बौद्ध परंपरा में महामाया को श्री लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जैन परंपरा के अनुसार वर्धमान के जन्म के पूर्व त्रिशला ने जिन 14 चिन्हों को सपने में देखा था, उनमें लक्ष्मी एक थी। ये 14 चिन्ह निम्न थे: हाथी, बैल, सिंह, श्री लक्ष्मी, माला, चंद्रमा, सूर्य, धवज, जार या घड़ा, कमल की झील, सागर, दैवनिवास, आभूषणों का ढेर आदि, अग्नि ज्वाला। श्री को यक्षिणी के रूप में दर्शाया गया है। श्री सूक्त में यक्ष, मणिभद्र तथा कुबेर को श्री से संबंधित माना गया है। वैष्णव धर्म का विकास। यद्यपि विष्णु का प्रथम विवरण ऋग्वेद में सूर्य देवता के रूप में हुआ, परंतु यह महान देवता के रूप में उत्तर वैदिक काल में ही स्थापित हुए। विष्णु वासुदेव कृष्ण देवताओं में एकात्म स्थापित कर यादव विष्णुगढ़ ने वासुदेव को महान देव स्वीकार किया। शांति पर्व में सतवत एवं भागवत एक ही संदर्भ में बार बार प्रयोग किए गए हैं, जो विष्णु के विभिन्न रूपों में एकात्म को स्थापित करता है। अंगुत्तर निकाय में वर्णित धर्मों एवं संप्रदायों आजीविक, त्रिगंथ, मुंडेशावक, जटिलक, परिवारजक, तेदंडी आदि में वासुदेवकों का उल्लेख नहीं है। संभवतः सर्वप्रथम पाणिनि की अष्टाध्यायी में वासुदेव एवं अर्जुन के पूजकों का उल्लेख हुआ है। इससे यह माना जा सकता है कि प्रारंभ में वैष्णव संप्रदाय पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित था। पतंजलि के महाभाष्य में वासुदेव कृष्ण का स्वरूप अत्यंत विकसित हो गया। महाभाष्य में स्वरकलक चैत्रक तथा उग्रसेन को गंधकगढ़ से तथा वासुदेव, बलदेव एवं विश्वकसेन को विष्णुगढ़ से संबंधित माना गया है। दोनों गढ़ एक ही हैं तथा अंधक विष्णुगढ़ के नाम से जाने जाते हैं। पतंजलि ने कृष्ण की पत्नी सत्यभामा का, कंस का वध, अक्रूर, संकर्षण आदि का वर्णन किया है। ईसा शताब्दी के प्रथम काल में वैष्णव धर्म मथुरा से बाहर निकलकर राजस्थान, मालवा तथा महाराष्ट्र तक विस्तृत हो गया। सर्वतात का घोषुंडी अभिलेख, हेलुडोरस का वेशनगर अभिलेख तथा नयनिका का नानाघाट अभिलेख इसके प्रमाण हैं। हिंदवन शासक अथा अगाथोक्लीस के चांदी के सिक्कों पर श्री कृष्ण एवं बलराम को क्रम समूशल एवं हल लिए हुए अंकित किया गया है। मल्हार से इस काल की विष्णु की मूर्ति पाई गई है, जिसमें वे शंख खड़ग चक्र तथा गदाधारी हैं। गुप्त काल में वैष्णव धर्म की अत्यधिक उन्नति हुई। गुप्त शासकों ने वैष्णव धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार किया तथा गरुड़ को राजकीय चिन्ह बनाया। गुप्त काल के अधिकांश अभिलेखों में विष्णु को भागवत नाम से अंकित किया गया है। 484 ईस्वी के मध्य प्रदेश के एरर अभिलेख में उन्हें जनार्दन कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय तथा उसके पश्चात के गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की। महरौली लौह स्तंभ में यह वर्णित है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु के सम्मान में विष्णु पादगिरी पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। गुप्त अभिलेखों में विष्णु के भिन्न अवतारों को अलंकरण के साथ वर्णित किया गया है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में यह वर्णित है कि कृष्ण असुरों का संहार कर माता देवकी का आशीर्वाद लेने गए। 423 ईस्वी के गंगाधर अभिलेख में विष्णु का तांत्रिक देवियों के साथ मंदिर निर्माण का उल्लेख है। उत्तर गुप्त काल में वैष्णव धर्म की स्थिति पुनः गिरने लगी, क्योंकि इस काल के प्रमुख शासक हर्ष, तोरमाण, मिहिर गुप्त, यशोधर्मन, शैव थे, जिसमें हर्ष ने बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। प्रतिहार शासकों में केवल देवशक्ति तथा भोजदिति ही परम वैष्णव थे। राजपूत काल में तथा उसके पश्चात वैष्णव भक्ति में मुख्यतः गोपाल संस्कृति तथा रसकीणा की अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिला। इस काल में राधा कृष्ण संप्रदाय का विकास हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्ण से राधा के विवाह का भी वर्णन है। 12वीं शताब्दी के जयदेव कृत गीत गोविंद में राधा कृष्ण लीला का अद्भुत वर्णन प्राप्त होता है। गुप्त सम्राटों की मुद्राओं पर उनकी उपाधि परम भागवत उत्कीर्ण है, जो उनके वासुदेव उपासक और वैष्णव धर्मावलंबी होने का प्रबल प्रमाण है। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे शासक भागवत धर्म के अनुयायी थे। उनकी मुद्राओं और तत्कालीन अभिलेखों से वैष्णव धर्म संबंधी अनेक संकेत प्राप्त होते हैं। गंगाधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन के नाम से अभिव्यक्त किया गया है। उड़ीसा स्थित उदयगिरी में चतुर्भुज विष्णु की एक प्रतिमा है, जो 400 ईस्वी की है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के अंतर्गत भीतरी में स्कंदगुप्त का एक स्तंभ लेख साड़िंग की मूर्ति का उल्लेख करता है, जिसके पूजन आदि के लिए ग्राम दान किया गया था। कुमारगुप्त के गढ़वा अभिलेख में विष्णु को भागवत कहा गया है। स्कंदगुप्त कालीन जूनागढ़ का अभिलेख विष्णु मंदिर के निर्माण का वर्णन करता है तथा वामन रूपधारी विष्णु द्वारा बलि से लक्ष्मी को छल से हर लेने की बात उल्लिखित करता है। अवजत अभिलेख में वसुदेव पुत्र माधव के चरणों की लक्ष्मी द्वारा सेवा की बात उल्लिखित है। वसुदेव पुत्र माधव के चरणों की बुद्धगुप्त के दामोदर अभिलेख में वर्णित है कि कौशिकी और कोका नदियों के संगम पर वराह क्षेत्र में हिमालय के शिखर पर वराह स्वामी और कोकामुख स्वामी के मंदिर का निर्माण हुआ था। हुण शासक तोरमाण के एरण से प्राप्त वराह मूर्ति और उसके अभिलेख वराह रूप नारायण के मंदिर निर्माण का संदर्भ मिलता है। कदम्ब राजकुल के तगारे के अभिलेख में वराह अवतार का उल्लेख है। पूर्वी चालुक्यों का राज चिन्ह भी गरुड़ था, जो उनके वैष्णव होने का प्रमाण है। उनके अधिकांश अभिलेखों का प्रारंभ वराह की वंदना से होता है। वराह अवतार ही सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति उदयगिरी गुहा की दीवार पर विशालकाय रूप में उभारी गई है। इसमें पृथ्वी की रक्षा करते हुए वराह रूपी भगवान को चित्रित किया गया है, जिसके दांत से अति लघुकाय नारी मूर्ति लटकी हुई है। ऐसे वराह रूपधारी भगवान का उल्लेख कालिदास ने भी किया है। उनके ग्रंथों में मोरपंखधारी कृष्ण का भी उल्लेख है तथा उनके भाई बलराम और उनकी पत्नी रुक्मिणी का भी संकेत है। गुप्तकालीन अनेकानेक पुराणों में विष्णु के समस्त अवतारों का विशद विवरण मिलता है। मत्स्य कश्यप, वराह, नरसिंह, वामन, राम, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि नामक 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। दक्षिण के चालुक्य वंशी शासक मंगललेश ने पर्वत पर कटे गुफा मंदिर में विष्णु और नारायण तथा वराह और नरसिंह की प्रतिमाएं गढ़वाई हैं। विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं तथा लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। एलोरा के दशावतार विष्णु मूर्तियां तत्कालीन वैष्णव धर्म के प्रचार के उत्कृष्ट प्रतीक हैं। शेषशायी विष्णु के चरण दबाती हुई लक्ष्मी को दर्शित किया गया है तथा भगवान की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा विराज रहे हैं। नरसिंह, वामन, वराह और गोवर्धनधारी कृष्ण की भी आकर्षक और अभिराम मूर्तियां हैं। वराहमिहिर ने अपनी बृहत संहिता में विष्णु और भागवत की चर्चा की है। भागवत शब्द तत्कालीन भागवत संप्रदाय की ओर इंगित करता ही है, साथ ही विष्णु के भक्तों को भी व्यंजित करता है। अमर सिंह ने अपने कोश ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 39 विभिन्न नामों की चर्चा करते हुए वसुदेव को उनका पिता माना है। हर्ष के युग में भी वैष्णव धर्म की गति निरंतर प्रवाहमान थी। बाण ने हर्षचरित में पांचरात्रक और भागवत संप्रदायों का उल्लेख किया है, जिनके अनुयायी दिवाकर मित्र के आश्रम में रहते थे। भागवत लोग वसुदेव विष्णु की उपासना करते तथा अवतारवाद के सिद्धांत को मानते थे। स्मार्ण वैष्णव वर्ज के अधिपति गायों को चलाने वाले तथा गोपियों के प्रिय श्री कृष्ण की आराधना करते थे। कादंबरी में अनेक स्थलों पर विष्णु के आख्यानों का उल्लेख है। वैष्णव धर्म का प्रसार राजपूत युग में भी था। खलीमपुर दानपत्र से विदित होता है कि विष्णु का पूजन ओम नमो नारायण के नाम से किया जाता था। कभी कभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी कहा जाता था। प्रहाड़पुर की कलाकृतियों में गोवर्धनधारी कृष्ण की भी आकृति है। जयदेव ने राधा कृष्ण संप्रदाय का उल्लेख किया है। प्रतिहार शासक भोज के अभिलेख में विष्णु को निर्गुण और सगुण का प्रतीक मानते हुए हर्षिकेश के रूप में वर्णित किया गया है। पूर्व मध्य युग में भी विष्णु अपने सहनामों से समाज में पूजित थे, जिनमें वासुदेव नारायण, कृष्ण, मुरारी, आदि केशव, हरि, माधव आदि नाम अधिक प्रचलित थे। इस युग में अनेक विष्णु मंदिरों और मूर्तियों के भी निर्माण हुए, जिनका उल्लेख तत्कालीन अभिलेखों में हुआ है। ऐसे अनेक अभिलेख मिलते हैं जिनमें मंदिरों के लिए दिए गए विभिन्न प्रकार के दानों के संकेत हैं। सेनवंशी शासक अपने को परम वैष्णव कहते थे। चंदेल शासक परमार्दी के बटेश्वर अभिलेख में विष्णु मंदिर का उल्लेख मिलता है। खजुराहो में चंदेल शासक के संरक्षण में अनेक देव मंदिरों के निर्माण कार्य हुए, जिनमें विष्णु के भी अनेक मंदिर थे। चेदी शासक लक्ष्मण राज के मंत्री सोमेश्वर ने एक विष्णु मंदिर बनवाया था। परमार शासक भोजदेव के वेतन दान पत्र में करुध्वज के फहराने का उल्लेख है। बंगाल के पाल शासक धर्मपाल के काल में नारायण का मंदिर निर्मित हुआ था। नारायण पाल के समय के एक अभिलेख से गरुड़ध्वज का संकेत मिलता है। उड़ीसा में अनेक विष्णु मंदिरों का निर्माण हुआ था। ऐसे मंदिरों का केंद्र भुवनेश्वर था, जहां 12वीं शताब्दी में अनंत वसुदेव का भी मंदिर बना था। विष्णु के मंदिरों के अतिरिक्त इस काल में विष्णु की अनेक मूर्तियां भी गढ़ी गईं। शंख, चक्र, गदा और पद्म को अपने करों में धारण किए हुए भगवान विष्णु की मूर्तियां पारंपरिक आधार पर निर्मित हुआ करती थीं। इस प्रकार की मूर्तियां पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से प्राप्त हुई हैं। इस युग में हरिहर का भी उल्लेख मिलता है, अर्थात वैष्णव और शैव नामक दो विरोधी संप्रदायों का एक साथ सहिष्णु भाव से दर्शित किया गया है। भगवान कृष्ण की भी अनेक मूर्तियां इस काल में निर्मित की गईं। विष्णु की मूर्ति के साथ लक्ष्मी और गरुड़ की भी मूर्तियां बनाई गई थीं। परमार्दी के अभिलेख में महालक्ष्मी उत्कीर्ण हैं, जिस पर जल चढ़ाते हुए हाथी चित्रित किया गया है। गुप्त शासकों की मुद्राओं की तरह चेदी शासक गांगदेव, चंदेल शासक कीर्ति वर्मा और कश्मीर शासिका दिद्दा की मुद्राओं पर भी लक्ष्मी के चित्र अंकित हैं। विष्णु के विभिन्न अवतारों का संदर्भ पुरातात्विक साक्ष्यों से भी मिलता है। वैसे इस युग के कुछ साहित्यिक ग्रंथ भी विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख करते हैं। श्रेमिंद कुल, दशावतार चरित, जयदेव, लिखित गीत गोविंद आदि प्रतिनिधि ग्रंथों में विष्णु के 10 अवतार का वर्णन है। युवराज देव के बंधोगढ़ अभिलेख में विष्णु के कई अवतारों का उल्लेख है। नागपुर से प्राप्त परमार शासक के अभिलेख में विष्णु को मत्स्य जैसे अनेक रूपों में दर्शित किया गया है। विष्णु का वराह अवतार समाज में अधिक प्रचलित हुआ था, जिसकी गुप्त काल से अनेकानेक मूर्तियां भी निर्मित होने लगी। 10वीं सदी के मेवाड़ के एक अभिलेख में वराह अवतार का उल्लेख है। यही नहीं, नरसिंह अवतार के भी अनेक अभिलेख मिलते हैं। राजपुताना से प्राप्त एक अभिलेख में नरसिंह अवतार का सुंदर चित्रण किया गया है। बंगाल से प्राप्त 4 हाथों वाली नरसिंह की मूर्ति प्राप्त हुई है। विष्णु के वामन अवतार की मूर्तियां उत्तर भारत से प्रायः नहीं मिलती। बंगाल से प्राप्त अभिलेखों में वामन अवतार के उदाहरण मिलते हैं। यही नहीं, परशुराम की भी कुछ प्रतिमाएं बंगाल से प्राप्त हुई हैं। महाकवि जयदेव ने परशुराम को जगतपति और भृगुपति के रूप में उल्लिखित किया है। भोज के ग्वालियर अभिलेख में राम को विष्णु के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। राम की लीलाओं का चित्रण पहाड़पुर की कलाकृतियों में भी हुआ है। 11वीं सदी के अरब यात्री अलबरूनी ने स्थानेश्वर के चक्रस्वामी का उल्लेख किया है। उसके अनुसार तानेसर नगर हिंदुओं द्वारा अत्यधिक पूजित है। उस स्थान की मूर्ति चक्रस्वामिन कहलाती है, अर्थात चक्र का स्वामी। गुजरात में चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने दशावतार का मंदिर निर्मित कराया था, जो सहस्त्रलिंग झील के किनारे स्थित था। उसके एक मंत्री ने दधीपुर में गंग नारायण के मंदिर का निर्माण कराया था। भीम द्वितीय के एक शासकीय अधिकारी ने केशव का मंदिर बनवाया था। पेहोवा अभिलेख में विष्णु गरुणासन के साथ उत्कीर्ण है। गढ़वाल ताम्र पत्रों से विदित होता है कि काशी के वरुणा और गंगा के तट पर आदि केशव का मंदिर बना था। समाज में वैष्णव धर्म संबंधी अनेक समारोह प्रचलित थे, जिनका उल्लेख पुराण आदि में हुआ है। इस संबंध में गुप्तकालीन अभिलेखी प्रमाण भी मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के उदयगिरी अभिलेख में शयन एकादशी का उल्लेख है, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती थी। इस दिन हरी सो जाते थे और कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन जगते थे। जिस दिन वे जगते थे उसे देवोत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। गंगाधर अभिलेख में कहा गया है कि यह दिन प्रफुल्लता और उल्लास लाता है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन मनाई जाती थी। अलबरूनी ने भी वैष्णव त्योहारों का उल्लेख किया है, जिनमें देवशयनी एकादशी, कृष्ण जन्माष्टमी, देवोत्थान एकादशी, रामनवमी आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। विष्णु के अवतारों में राम का अवतार समाज में सर्वाधिक व्यापक मान्य और प्रतिष्ठित हुआ। राम के महत्व और उनके व्याख्यान की गरिमा को लेकर वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, किंतु वासुदेव कृष्ण की तुलना में राम की उपासना का प्रचार और प्रसार उतना नहीं हो सका। वस्तुतः राम को अवतार के रूप में मानने का क्रम परवर्ती काल में संभवतः पहली सदी ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जो गुप्त युग में आकर पुराण साहित्य में वर्णित हुआ। रामायण में राम के अवतार के रूप का जो उल्लेख मिलता है वह प्रक्षिप्त है। पुराणों के अतिरिक्त कालिदास कृत रघुवंश में विष्णु के अवतार के रूप में राम जन्म की कथा दी गई है। वायु पुराण जैसे प्राचीन पुराण के अतिरिक्त अन्य पुराणों में भी राम को विष्णु का अवतार माना गया है। गुप्तयुगीन स्थापत्य और वास्तुकला में रामाख्यान के दृश्य मिलते हैं। देवगढ़ ललितपुर में राम, सीता, लक्ष्मण आदि की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, किंतु पूर्व गुप्तयुगीन साहित्य में राम का अवतार रूप नहीं मिलता। 1011 ईस्वी में अमित गिरि ने राम को जगत स्रष्टा, जगनियंता, सर्वव्यापक और सर्वज्ञ के रूप में चित्रित किया। राम के चरित्र को महाकवि भवभूति ने अत्यंत अभिराम और उत्कृष्ट रूप में अभिव्यंजित किया है। माधव के विषय में यह प्रचलित है कि वे बदरिकाश्रम से भगवान राम की मूर्ति लाए थे। 1264 ईस्वी के लगभग उन्होंने नरहरि तीर्थ से राम और सीता की प्रतिमाएं जगन्नाथ धाम मंगवाई थी। राम, लक्ष्मण और सीता की एक साथ गढ़ी हुई प्रतिमाएं कुरुक्षेत्र के निकट से प्राप्त हुई हैं, जो संभवतः प्रतिहार शासक भोजदेव और महेंद्रपाल के काल की हैं। 13वीं सदी के लेखक हेमांद्री के ग्रंथ व्रतखंड में रामनवमी के दिन राम जन्म त्योहार मनाने का निर्देश किया गया है। वृद्धहरित ने अवतारों के साथ राम अवतार का उल्लेख करते हुए उनकी महत्ता पर प्रकाश डाला है। राम के देवत्व और परम पुरुष रूप को वर्णित करने के लिए अध्यात्म रामायण की रचना की गई थी, जो संभवतः 14वीं सदी के बाद की रचना है। नित्य सर्वज्ञ और आनंद के रूप में राम का चित्रण किया गया है। मूल बुद्धिमय और दृश्यमान पदार्थ नामक आत्मा की त्रिविध प्रकृति बतलाई गई है, जिनमें अंतिम दो सत्य नहीं है। पुस्तक के अंतिम कांड के पंचम वर्ग में सर्ग में भगवद गीता की तरह राम गीता का संयोजन किया गया है, जिसे राम ने लक्ष्मण को अद्वैत मत का उपदेश देने के लिए सुनाया था। दक्कन क्षेत्र में वैष्णव प्रजा का वर्णन सातवाहन काल में प्राप्त होता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाशिक अभिलेख में उसे बलराम एवं केशव के समक्ष माना गया है। नैनिका के नानाघाट अभिलेख में वासुदेव एवं संकर्षण भक्ति का वर्णन है। पल्लव शासकों ने भी विष्णु को संरक्षित किया। पल्लव अभिलेखों में नारायण कि देवकुल का वर्णन प्राप्त होता है। चालुक्य शासकों की उपाधि भी परम भागवत प्राप्त होती है। विष्णु का शेष संया पर लेटना, लक्ष्मी के द्वारा पैर दबाना, वराह नरसिंह वामन अवतार का अंकन चालुक्यों के काल में प्राप्त होता है। 8वीं शताब्दी के चालुक्यों के दशावतार एवं कैलाशनाथ मंदिरों में विष्णु अवतारों का अंकन प्राप्त होता है। दक्षिण के गंग तथा कदम्ब शासकों में से कृष्ण वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। दक्षिण में वैष्णव धर्म को आंदोलन का रूप आलकवार ने दिया। यही से तमिल भक्ति परंपरा का प्रारंभ होता है।